الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ مدنی چینل کا پروگرام سبق آموز خبریں کے ساتھ حاضر ہیں آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں معاشرے میں ہونے والی اچھی اور بری خبروں کو شامل کیا جاتا ہے اور اس پر رائے مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد عمران اتاری صاحب سے لی جاتی ہے آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری صاحب اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم خبروں سے متعلق جو ہے وہ رائے بھی جانیں گے ان کی اور کیا خبریں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک مختصر جھلکیوں میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پروگرام میں آج جو خبریں ہم شامل کریں گے وہ خبریں کیا ہوں گی آئیے اس پر ایک جھلکیوں کا پیکج دیکھتے ہیں
پروگرام سبق آموز خبریں کی جھلکیاں
کراچی میں عید کی تعطیلات کے دوران ٹریفک حادثات میں 70 افراد ہلاک
رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی زندگی میں دائمی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے
حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز آئی ہیں جس میں کوئی شخص کوئی سرگرمی کر رہا ہے اور اچانک اس کی موت واقع ہو گئی انسان غذائی انتخاب بھی صحت کے لیے نقصان دہ اور زیادہ کیلوریز والا کرتا ہے ملک میں خوراک کا سالانہ ضیاع 19.6 ملین ٹن ہے
عرب میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے دیگر 3 بہن بھائیوں اور والدین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا
کھڑے ہو کر سلام کیوں نہیں کیا تاجر کے بیٹے نے ملازم کو قتل کر دیا موبائل فون کے استعمال کے دوران فون چہرے کے قریب پڑنے سے 8 سالہ بچی ہلاک ہو گئی جب فریج میں موجود دودھ کے برتن کا جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ دودھ کے برتن میں 1/3 انچ کا مردہ سانپ موجود تھا فائرنگ میں 8 طلبہ اور 1 سیکورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے جبکہ 6 طلبہ اور 1 ٹیچر زخمی ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیمز طلاق اور خلا میں اضافے کا اہم سبب
ہلاک اور زخمی تارکین وطن کا تعلق وینزویلا سے تھا اور یہ لوگ چند روز قبل ہی پناہ گاہ میں رہائش کے لیے آئے تھے پولیس کے مطابق لڑکے کی فیملی کا کہنا تھا کہ لڑکا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا برطانیہ میں نشئی والدین نے اپنے 10 ماہ کے بچے کو بے دردی سے مار دیا رواں مالی سال کے دوران اب تک شرح سود میں 6.25% اضافہ کیا گیا ہے دکاندار سے مرغی کی قیمت پر معمولی تکرار ہوئی قیمت زیادہ ہونے کا شکوہ کیا تو دکاندار نے دھکے دیے اور بدتمیزی کی مقامی حکام کے مطابق ہفتے کی صبح سونے کی کان میں آگ لگی جس کے نتیجے میں داخلی راستہ بند ہو گیا اور کان میں دھواں بھر گیا جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی کراچی پتنگ کی ڈور نے 9 سالہ بچے کی جان لے لی اہل خانہ غم سے نڈھال
ہمارے پاس رپورٹ ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پر مولانا صاحب کی رائے بھی لیتے ہیں
بالوں کی کٹنگ پسند نہ آنے پر 13 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی میڈیا کے مطابق واقعہ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا جہاں 13 سالہ لڑکا اپنے بالوں کی کٹنگ کے لیے حجام کے پاس گیا پولیس کے مطابق لڑکے کی فیملی کا کہنا تھا کہ لڑکا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا وہ اپنے بالوں کی کٹنگ سے ناخوش تھا اس کے مطابق وہ اس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے چھوٹے بال پسند نہ آئے اور خودکشی کر لی پولیس کے مطابق بالوں کی کٹنگ سے دل برداشتہ ہو کر لڑکے نے 16ویں منزل پر واقع اپنے باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی
سربیا میں 14 سالہ طالب علم کی اسکول میں فائرنگ سے 8 بچے اور گارڈ ہلاک غیر ملکی میڈیا کے مطابق سربیا کے شہر بلگراد کے ایک اسکول میں مسلح ملزم نے اندر گھس کر پہلے سیکورٹی گارڈ کو قتل کیا اور پھر طلبہ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی فائرنگ میں 8 طلبہ اور 1 سیکورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے جبکہ 6 طلبہ اور 1 ٹیچر زخمی ہوئے ہیں پولیس نے 14 سالہ مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا ہے جس نے فائرنگ کے لیے اپنے والد کا پستول استعمال کیا تھا دنیا بھر میں ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے
جی حضور کیا فرمائیں گے آپ نے یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ دیکھی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کیا ارشاد فرمائیں گے
اصل میں تمام تر اگر خبروں پر جائزہ لیں گے نا تو اس میں بہت ساری چیزیں جذباتیت جذباتی پن
جی
غصہ عدم برداشت اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ کافی ساری اخلاقی خرابیوں پر مشتمل یہ
ٹھیک ہے
نیوز ہے अब अगर ये अखलाकी खराबियों का अगर जायजा ले तो डेफिनेटली ये कम नहीं है।
ठीक है।
ये तो मुख्तलिफ तो दो चार ही खबरें आपने अभी दिखाई हैं, मगर इसी को सामने रखकर अगर हम अपनी दीगर आदतों का जायजा लें तो हम ये खबरें दिखाते इसलिए हैं कि ये सारी चीजें माशरे में हो रही हैं। अगर हमने अपने जज्बात पर, अपने एहसास पर या अपनी आदतों पर कंट्रोल ना किया, अब आप देखिए ना कि नशे वालिदैन का अपने बच्चों को, बच्चे को कत्ल कर देना,
जी
अब उसके असबाब जो भी हो सकते हैं, लेकिन नशा की यहाँ पर बाकायदा एक खराबी आएगा। ये तो दो दोनों सूरतें हमें, बल्कि इससे ज्यादा सूरतें हमने देखी हैं कि नशे का आदि शोहर बीवी को मार देता है, नशे के आदि बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, और नशे के आदि वालिदैन जैसा कि हम सुन रहे हैं
जी
वो अपने बच्चे को मार देते हैं। तो एक ऐसी आदत के जो दिमाग को खराब कर देती है, आदतों को बर्बाद कर देती है, और जो कुछ पता चलता है, सुना जाता है कि नशा अकल पर गालिब आ जाता है, जज्बाती कर देता है,
सही
ना मिलने की सूरत में जैसे कि बंदा नेगेटिव, ये भी मुझे पता चला है कि नशे की आदत जो है ना ये बंदे को नेगेटिव कर देती है, वो भी मनफी सोचता है, ये इसका एक साइड इफेक्ट हमने मेरी मालूमात में जो है वो है। तो वो अपनी बीवी के बारे में भी नेगेटिव जाता है, औलाद के बारे में नेगेटिव जाता है, खुद अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव जाता है, और ये चीजें ना मिलने की सूरत में ये जज्बाती हो जाता है
सही
और अकल काम नहीं कर रही होती है, और उसको एक तलब पैदा हो गई होती है, और जो इसकी राह में फिर रुकावट बनती है चीजें, वो रुकावट को फिर वो हटाने की कोशिश करता है।
ठीक है।
ये खबरें हमें इस बात का पता देती हैं कि हमारे माशरे में जहां जहां ये नशा आ रहा है वहां तबाही आ रही है। क्योंकि नशा और नशे वाली अशिया ये दुनिया भर में बहुत आम हो रही है, पाकिस्तान में भी आम हो रही है, और दुनिया के वो ममालिक भी हैं जहां ये लीगली अलाव है और
सही
कोई इसकी रुकावट रोकथाम नहीं है, और लोग लीगली सड़कों पर या यूं घूमते फिरते पी सकते हैं, इनको कोई मना नहीं है। नशे में आप शराब को भी ले लें, नशे की आदतों में आप चरस को ले लें, हीरोइन को ले लें, इसके अलावा और 10 किस्म के नाम हैं, मैंने दो तीन मशहूर नाम आपको बताएं, और सारे नाम लेने की हाजत और ज़रूरत भी नहीं है, कई नाम मुझे और भी इल्म है कि मैंने इस पर प्रोग्राम किए हैं।
सही
अब अगर आप जो इस वक्त देखो सुन रहे हैं, अगर आप नशे के आदी हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर अब आपको नोटिस करना है कि ये नशे की आदत आपको कहाँ लेके जाएगी। खुदा ना खास्ता बंदा नशे की वजह से खुदकुशी तक कर लेता है, नशे की आदत खुदकुशी तक ले जाती है, फिर नशे की आदत बंदे को कत्लो गारतगिरी तक ले जाती है, नशे की आदत चोरी तक ले जाती है, और नशे वाला आदमी उमूमी तौर पर खुद को तन्हा रखना पसंद करता है, क्योंकि वो इस आदत को सबके साथ कर नहीं सकता, या तो उसको गैदरिंग वो चाहिए जो नशे वाली हो, या फिर उसको तन्हाई चाहिए। और ऐसी तमाम तो सूरतों के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट होती है, नंबर एक आखिरत, नंबर दो उसकी तमाम तर ये दुनियावी मामला जो ये गुजार रहा है वो भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग का इसमें अलग रुझान होता है। तो नशा अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। तो अब नशे की आदत एक तो निकालनी चाहिए, फिर नशे वाली सोहबत छोड़नी पड़ेगी आपको, अगर आप नशा छोड़ने में सीरियस हैं, और सीरियस आपको आज हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये आदतें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ऑर्गन ऑफ बॉडी में से अगर आप मेडिकली तौर पर भी चेक करेंगे, शराब बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करती है, इसी तरह और जो नशे की आदतें होती हैं वो दीगर आजाए जो वो गुर्दे, फेफड़े, जिगर, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को ये इफेक्ट करती हैं, खून के अंदर खराबियाँ ये लाती हैं, तो फिर ये बर्बाद कर देती है। तो एक तो ये है, फिर दूसरा जो कत्ल वगैरह की आपने एक दो और खबरें भी मुझसे शेयर की।
जी ये था कि तालिबे इल्म ने जो है वो अपना नाकामी पर, इम्तिहान में फेल होने पर खुदकुशी कर ली थी, और इस पर जो है वो मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें ये था कि 11वीं और 12वीं जमात के जो इम्तिहानात का जैसे ही ऐलान हुआ तो उसमें 48 घंटे के बाद जो फेल होने वाले 9 तलबा और तालिबात ने इस पर खुदकुशी कर ली थी, ये
ये
रिपोर्ट है हमारे।
एजुकेशन से रिलेटेड है ना?
हाँ जी
अच्छा, इस पर भी हमने बाकायदा डिस्कस की है माजी में भी, कि अपने आप को और अपने बच्चों को ऐसा भी एजुकेशन के तौर पर कॉन्शियस लेवल पर ना लेके जाएं कि जिससे उसको ऐसा लगे कि अगर मैंने क्लास पास ना किया, अच्छा वो भी अच्छे मार्क्स से पास ना किया या फेल हो गया तो मतलब मुझे तो दुनिया जीने नहीं देगी। ऐसी सूरत हाल जब हम घर में पैदा करते हैं तो हमारे ये जो नेशन है हमारी, ये स्पेशली जो यंग है, ये खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। और वो असबाब जो खुदकुशी में ज़्यादा इस वक्त शुमार किए जा रहे हैं उनमें से एक रीज़न एजुकेशन भी है। यानी एजुकेशन के ताल्लुक से इतना हम अपने आप को जज्बाती कर देते हैं कि माँ बाप भी फिर जज्बाती हो जाते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, तेरे इतनी वो की कर्जा ले लिया
जी।
तो वो नहीं पढ़ सका तो अब ठीक है, आपने बोला तो उसने खुदकुशी कर ली, माजल्ला खुदकुशी कर ली। तो ना बच्चा, ना तालीम, ना सरमाया, कुछ भी नहीं। कम से कम जिंदा रहता तो कम दो पैसे कमा कर तो खिला देता आपके पास, कुत्तों वसूली की सूरत होती, चोट करने के लिए कह रहा। अब तो बच्चा ही चला गया, क्या कर लिया। अच्छा अब ये कि ये खबरें जब हम पढ़ते सुनते हैं तो पता नहीं मुझे कि ये पहले भी मैंने ये खबरें शेयर की हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के साथ, अब मुझे नहीं पता कि इन खबरों के बाद वालिदैन पर क्या इफेक्ट पड़ा है कि वो इस मामले में मोहतात हो गए नहीं हो गए, या इस मामले में उन्होंने कुछ स्पेस बच्चों को दिया या नहीं दिया।
सही,
ठीक है, आप तालीम के नाम पर उनको आप मोटिवेट करें, इनको जो भी एक अपना अंदाज है उसको लेकर चलें। लेकिन अब ऐसा माँ बाप अपने बच्चों को कर दें कि बच्चा कहे कि मैं तो मतलब कि मर ही गया, अब तो खत्म, अब घर जाऊंगा कैसे। अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर ऐसा माहौल, इसको सबके सामने खड़ा करके जलील किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट उसको जलील करेंगे, टीचर जलील करेंगे, इसको एडमिन जलील करेंगे। फिर जिन दोस्तों में जाएगा तो थोड़े पढ़े लिखे टाइप के होते, तो वहाँ तो मामू अलग कोस रहा होगा, तो चाचा अलग कोस रहा होगा, तो बहनें अलग कोस रही होंगी। जैसे में कोई भाई, एक दो दो भाई बहन अगर अच्छे नंबर पर पास हो रहे होंगे तो उनका सारा मामला अलग होगा। फिर उनको अलग दिखाया जाएगा, देख तेरे मामूजाद भाई को, देख तेरी मामूजाद बहन को, देख तेरे दोनों भाई बहनों को ये कैसे हैं। तो वो ये सुन सुनकर या तो वो डीड होगा कहीं और ही निकल जाएगा,
सही,
या फिर माजल्ला
खुदकुशी
करेगा। और खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और जिंदगी भर के लिए वालिदैन के लिए सदमा है। तो पहले भी ये दरख्वास्त की है, अब भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हर चीज अपने इत्तदाल के साथ अच्छी लगती है, मियाना रवी रखें, बैलेंस रखें और बहुत ज्यादा जज्बाती ना हो। आप कहेंगे बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या पता आपने उसको जिस एजुकेशन फील्ड में डाला है वो आपकी ड्रीम थी कि मेरा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा डॉक्टर बने, उसको डॉक्टर बनना ही नहीं था, उसका पैशन ही नहीं है मेडिकल पढ़ना, उसका पैशन ही नहीं है इंजीनियरिंग करना, उसका पैशन ही नहीं है कि मैं सीए बनूं, उसका पैशन ही नहीं है। तो आप बोलोगे तो क्या बनेगा, आप उससे पूछो ना तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा पैशन क्या है। पैशन प्रोफेशन अगर वो एक हो जाए समझे, इज देन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। अगर पैशन के मुताबिक प्रोफेशन हो जाता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अगर वो जो कुछ अपनी फील्ड इख्तियार करना चाहता है वो शरान खराब नहीं है, वो अखलाकन खराब नहीं है, तो आप उसकी तरफ उसकी रहनुमाई करें और जो शरीयत के तकाज़ उसके मुताबिक आप उसकी मदद करें। और आप क्यों चाहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही ये करे।
लेकिन तो, इसमें एक मैं माफी चाहता हूँ, एक इसके अंदर जो एक चीज़ है कि वालिदैन, ये आपने फरमाया कि वालिदैन इसकी तरफ बढ़ें, वालिदैन अपनी जो है वो औलाद को इस तरह से मौका दें, लेकिन वालिदैन के पास भी इस चीज़ का इल्म होना, इसका नॉलेज होना, ये भी उसमें क्या समझते हैं आपके वालिदैन के पास भी अगर नॉलेज होगा तो वो अपनी औलाद,
अगर वालिदैन मदनी चैनल देखते होंगे तो नॉलेज आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मगर वो देखते हैं कि मेरे दोस्त का बेटा क्या बन गया, मेरे भाई का बेटा क्या बन गया,
सही,
मेरे बॉस का बेटा क्या बन गया, तो मेरे पड़ोसी का बेटा क्या बन गया,
ठीक है।
वो अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करने में ही बेचारे खत्म हो गए कि वो ये बन गया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। नतीजा निकला कि आप मतलब के कबूतर को कौवा बनाने बैठे हैं या कौवे को कबूतर बनाने बैठे हुए हैं, तो ये तो नहीं होता ना मतलब। और मतलब के जो वो है वो है, हर एक की सोच, हर एक की मतलब के डायमेंशन या डायरेक्शन चेंज होती है। आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप बेटा ये बन जाएं, ये बन जाएं, तो ये है। अच्छा अब जैसे मिसाल में इल्मे दीन के ताल्लुक से अगर मैं अर्ज करूँ
जी,
तो आप कोई कहे के नहीं आप मुफस्सिर ही बने, तो उसकी दिलचस्पी हदीस की तरफ है,
ठीक है।
आप उसको कहें कि जनाब तुम हदीस ही पढ़ो, यानी हदीस में कोई आप महारत हासिल करें फन हदीस में, उसकी दिलचस्पी ज्यादा तो फिक की तरफ है, ये चीजें जो है ना, ये दिलचस्पी को बहुत मैटर करती है। एक टीचर के अंदर भी एबिलिटी और ये खुसूसियत टीचर का हिस्सा है, ये डेफिनेटली टीचर में होनी चाहिए, ये डेफिनेटली वालिदैन में होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे की दिलचस्पी को देखें, वो स्टूडेंट की दिलचस्पी को देखें, जिसकी दिलचस्पी कायम है, और उस तरफ फिर उसको लेकर चलें। दोबारा अर्ज कर दो, जबकि उस तरफ जाने में ना शरई खराबी है ना अखलाकी खराबी है, ऐसी कोई खराबी नहीं है, तो उस तरफ लेके जाएं तो इंशाल्लाह वो आपको रिजल्ट निकाल के देगा। अब आप जिस रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं तो वो रिजल्ट हो सकता है वो जबरदस्ती का सारा सौदा हो, और जबरदस्ती में तो रिजल्ट नहीं आया करता, जबरदस्ती में तो फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव तो बहुत मुश्किल है।
ठीक है ऐसा भाई, हमारे पास और एक खबर है। यहाँ पर फैसलाबाद के इलाके कचहरी बाजार में खड़े होकर सलाम ना करने पर ताजिर ने मुलाजिम को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो है ये फरार हो गया है, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक मुआशरे में इस तरह का पहलू भी हमारे सामने जो है ये है, आप क्या फरमाएंगे?
अब देखिए, ये है तो बहुत शायद ऐसा केस होते सुने नहीं जाते अमूमन, लेकिन इसमें भी बातों का ये होता है कि खाली ये नहीं होता होगा।
ठीक है।
वो जैसे मैंने एक मिसाल दी थी पहले भी मदनी चैनल पर, कि माचिस की तिल्ली ने ऊंट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, कैसे?
कैसे?
अब माचिस का जो जो इसको हम दिया सलाई भी कहते हैं,
जी ठीक
और माचिस की जो स्टीक है छोटी सी,
है
उसका तो वेट ही कोई नहीं है,
ठीक है।
मगर एक समझाने के लिए मुहावरा है इंग्लिश के अंदर, कि उसको जब ऊंट की पीठ पर रखा गया तो ऊंट की रीढ़ की हड्डी टूट गई।
ठीक है।
वो रीढ़ की हड्डी जो है ना माचिस की उस स्टिक से नहीं टूटी,
कैसे टूटी?
वो ऑलरेडी उसकी हड्डी पर इतना लोड पड़ा हुआ था। अब सर वो एक टिंका रखने की देर थी कि वो लोड बुरा हो गया। तो
ठीक है।
समटाइम ये होता है कि जो रीजन हमारे सामने आया हुआ होता है ना, वो ही रीजन बेस नहीं होता, बेस कुछ पीछे से चला आ रहा होता है। और अगर तुमने सलाम तक नहीं किया है ना, पहले से ही कुछ मतलब के खराबियां थी, या कुछ सड़ा हुआ काम था, कुछ सड़ा हुआ मामला था, कोई पहले से कोई नाराजगी थी, पहले
सही।
से कोई मतलब के आपस में क्लेश था, या उसकी तरफ से पहले से ही कोई इतने प्रॉब्लम्स थे कि
सही।
अब उसका ये सलाम ना करना ये आ गया, और
सही।
फिर सामने से अगले ने कुछ बोला कि नहीं बोला ये भी पता नहीं है।
ठीक है।
तो ऐसी सूरत अगर ऐसा केस हो जाता तो, अगर ये बहुत ज्यादा नहीं है, रेयर केस है, अगर हमें इसमें ये थोड़ा सा देखना सीखना चाहिए कि हालात और वाकयात का जायजा लें, और ऐसे हालात पैदा ही ना होने दें कि अब वो मतलब कि बस आग लगी के अब लगी। तो ये भी एक जज्बातीपन ही की तरफ लेके जा रहा है, कि
ठीक है।
हम अपने आप को ये जो जज्बातीपन की तरफ लेके जाते हैं कि यार ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए,
सही।
और इस तरह असलहा वगैरह के साथ रहना कि
जी
बस ये निकाल कर मार देंगे या किसी और चीज से हम कत्ल कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर कत्ल ना हक तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।
अल्लाह।
और ये तकरीबन ये जो वाकियात आप बयान करते हैं ना,
जी ठीक
इसकी वजह गुस्से की बेजा आदत होती है,
है।
और सम टाइम ये होता है कि माज अल्लाह सुबह माज अल्लाह किसी को सकता है कि इस मामले में तकबर ने भी बर्बाद किया हुआ हो, वो सामने वाले को इतना हकीर समझता हो कि ये किया।
जी
तो ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं कि कूल डाउन नरम
सही।
हो जाए, और अपने आप को इस तरह के जज्बाती अंदाज से बचाएं कि
ठीक है।
वो आपको कभी भी बहुत बड़ी गलती करवा सकती है।
सही। हुजूर ये बताइए कि जैसे मुलाजिमीन हैं, ये तो जाहिर है वहां पर उनके यहाँ एम्प्लॉय थे, तो मुलाजिमीन का अपने सेठ के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, इस पर भी आप कुछ गुफ्तगू फरमाइए। और क्या ये मुलाजिम का ये हक नहीं है कि वो अपने सेठ को खड़े होकर सलाम करे, इस पर आपकी क्या राय है?
हक तो नहीं कह सकते, क्योंकि सलाम करना ना करना एक अलग है, बल्कि आने वाला सलाम करता है
ठीक है जी।
तो है, आने वाला सलाम करता है। अगर आप मेरे कमरे में दाखिल हुए हैं, चाहे आप सेठ हैं या नौकर हैं, आप मेरे कमरे में दाखिल हुए हैं मुलाकात के लिए आए, तो
ठीक है सही।
आप सलाम करेंगे, सलाम वालेकुम, पहले इजाज़त लेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ,
सही।
तो ये होता है। और अगर खुदा ना खासा किसी ने कोई दूसरे को सलाम किया ही कोई नहीं, कोई नाजायज काम तो नहीं किया, सलाम करना यकीन सुन्नत और बिल्कुल करना चाहिए,
ठीक है
और मुलाकात के वक्त सलाम होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग है।
सही।
तो यहाँ कोई सेठ या नौकर वाली या छोटे बड़े वाली बात नहीं है। सलाम में पहल करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका रहा है और ये अंदाज हमें इख्तियार करना चाहिए। और सलाम में पहल करने वाला इंशाल्लाह तकब्बुर से भी बच जाता है, अल्लाह पाक उसको तकब्बुर से भी बचाता है।
सुभान अल्लाह। एक और पैकेज हमारे पास शामिल है, पैकेज नंबर 6, देखते हैं उसमें रिपोर्ट में हमें क्या दिखाया जा रहा
है। मुर्गी के गोश्त की कीमत पर तकरार ने एक शख्स की जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के वालिद ने बताया कि वो मुर्गी का गोश्त लेने गया तो दुकानदार से मुर्गी की कीमत पर मामूली तकरार हुई। कीमत ज्यादा होने का शिकवा किया तो दुकानदार ने धक्के दिए और बदतमीजी की। घर जाकर बेटे को बताया तो उसने जाकर दुकानदार से बदसलूकी से मुतालिक मालूम किया। मकतूल के वालिद का कहना था कि दुकानदार ने तेश में आकर अपने भाई के साथ मिलकर मेरे बेटे को छुरियां मारकर शदीद जख्मी किया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है।
जी हुजूर, क्या फरमाएंगे इस रिपोर्ट
पर? तकरीबन वही है जो आपने इससे पहले की जो दी, तकरीबन सिमिलर ही चल रहा है
जी।
और ये भी एक जज्बाती अंदाज है,
ठीक है।
अगर अगले ने अगर उनके वालिद साहब के साथ बदतमीजी की है, बिल्कुल गलत किया,
सही
नहीं करनी चाहिए थी। अब ये नहीं पता कि वालिद साहब ने सामने क्या किया था, ये भी नहीं पता। और इसके साथ अगर बच्चों को पता चला तो बच्चे अगर बात करें, अगर बात करनी है
ठीक है,
और बात बात की जाए, नरमी से बात की जाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उन्होंने आकर कैसी चढ़ाई की, मगर जो फाइनल नतीजा निकला वो गलत निकला।
सही
गलत निकला कि ये सब इसी तरह का गुस्सा आ जाना,
ठीक है,
गुस्सा आ जाना भैया। अब एंगर मैनेजमेंट पूरी एक
फील्ड है,
पूरा एक टॉपिक है।
सही,
अपने गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से पर काबू पाने के ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया, गुस्सा मत किया करो,
ठीक
है, और गुस्से से बचना। अगर गुस्सा आ जाए तो अगर खड़ा था तो बैठ जाए, बैठा था तो लेट जाए, वजू कर ले। ये गुस्से से बचने के, उस कैफियत से बचने के तरीके हैं। इवन के वहाँ से चला जाए अगर गुस्सा आ रहा है, तो जहाँ ये खड़ा है वहाँ गुस्सा आएगा तो वहाँ गुस्सा दिलाने वाली और भी चीजें हो सकती हैं।
सही,
तो घर भी टूटते तो गुस्से की वजह से। ये तकरीबन जो जेलों में जुर्म करके जो दाखिल हुए हैं, एक तो वो लोग भी होते हैं जेलों में जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ होता, बेकसूर जो जेलों में होते हैं, मैं उनका तस्करा नहीं कर रहा, लेकिन जो वाकई जिन्होंने जराइम किए हैं, तो उनसे अगर जाकर पूछेंगे तो उनकी मेजोरिटी वही है जिन्होंने गुस्से पर काबू नहीं पा सके और उन्होंने वो काम कर दिया जिनको नहीं करना चाहिए, तो लोहे की राड निकाली, सर फाड़ दिया, चाकू निकाला वो मार दिया, तो बीवी को धक्का मारा वो गिरा दिया, वो मर गई, जख्मी हो गई। तो इस तरह की चीजें हैं। औलाद माँ बाप पर गुस्से में आ गई, माँ बाप औलाद पर गुस्से में आ गए, पड़ोसी ने पड़ोसी को गुस्से में मार दिया, तो सेठ ने मुलाजिम को, मुलाजिम ने सेठ को गुस्से में मार दिया। तो गुस्से आ जाते हैं हमको, तो गुस्सा खत्म नहीं होता, गुस्से पर काबू पाया जाता है।
सही,
तो गुस्से पर काबू पाना यानी गुस्से का घूंट पीना ये पसंदीदा है। बल्कि उस शख्स की हदीस पाक में तारीफ आई है कि जिसको गुस्सा देर से आए और जल्दी चला जाए, और उस शख्स की मजम्मत की गई हदीस में कि जिसको गुस्सा जल्दी आए और देर से जाए।
सही,
तो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा खिलाफ तवक्को बात, खिलाफ मिजाज बात या कुछ तरह की गुफ्तगू होती है तो गुस्सा बंदे को आ जाता है। तो गुस्से के बारे में एक बड़ी प्यारी पोस्ट मैंने पढ़ी थी
जी,
कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को जलाती है।
अल्लाह हू अकबर,
माचिस की तेली की तरह है।
सही, पहले वो खुद जलती
है, पहले खुद जलती है फिर चूल्हा जलाती है।
सही, ठीक है। हुजूर, आपको लगता नहीं है कि महंगाई की जिस तरह से हर तरफ ये एक चीजें हैं और जहनी एक दबाव है, एक प्रेशर है लोगों के पास, और इस तरह की जो चीजें हैं, ये एग्रेसिव मूड जो हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज को भी आप कहीं देखते हैं?
करोड़ों लोग हैं सारी दुनिया में। अभी कल परसों की बात है, अमेरिका के मतलब को मुझे बता रहे थे, अमेरिका अमेरिका हम करते, तो अमेरिका में भी बहुत माशी मसाइल हैं, यूके में बहुत सारे माशी मसाइल हैं, यानी कि इकोनॉमिकली क्राइसिस तो दुनिया में कहाँ नहीं है। मैं अभी इंडोनेशिया होकर आया हूँ, तो इंडोनेशिया में भी बहुत सारे इकोनॉमिकली क्राइसिस हैं।
सही,
तुर्किया में गया था, तुर्किया में भी ये इसी तरह के इश्यूज हैं, बल्कि अल्लाह पर हमारे तुर्किया के मुसलमानों पर रहम करम फरमाए, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आजमाइश में। आप मुल्क शाम की ले लें, मुल्क यमन की ले लें, वहाँ के मुसलमानों की कैफियत और हालात का जायजा लें, तो क्या सारे किसी परेशानी की वजह से, गुर्बत की वजह से, रोजगार की तकलीफ से सारे गुस्से में आ रहे हैं। यानी करोड़ों नहीं, अरबों अरबों इंसान लोग दुनिया में, अरबों रहने वाले जीने वाले लोग, ये क्या सब गुस्से में एक दूसरे को खा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं ना।
नहीं,
अब इनमें एक परसेंटेज है कि जो इन हालात की वजह से अगर गुस्से में आई है तो ये देखिए कि भाई मैं अगर इफेक्टेड हूँ तो मेरा पड़ोसी भी तो इफेक्टेड है। अब मैं जैसे कि कल मेरा जाना दो तीन इलाकों में था, तो एक बड़ा मतलब के इलाका था, मिसाल जैसे अपने एक काफी वहाँ लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है,
ठीक है,
गरीब तबका, मजदूर तबका, और रोज कमाने रोज खाने वाले, छोटे मोटे कारोबार करने वाले वहां पर लोग रहते थे। मैं एक मरीज की इयादत के लिए वहां मेरी हाजिरी थी,
सही।
तो जब मैं वहां पहुंचा तो हमें ये देख ही रहा था वहां का, तो अब ये क्या मतलब ये कैसे सर्वाइव करते होंगे, तो छोटे घर हैं, तंग घर हैं, गलियां टूटी फूटी हुई हैं, गलियों में गटर का पानी खड़ा हुआ है, तो गाड़ी चलना मुश्किल है, पैदल चलने वाले के लिए चलना मुश्किल है, तो गाड़ी की क्या बात करना। तो घर से घर जैसे कि इस तरह के हैं, तो क्या उस घर के उस महल्ले में उस इलाके के अंदर लाखों वो लाखों की आबादी है, क्या सारे लड़ रहे हैं, क्या सारे कत्ल कर रहे हैं माजल्ला, के सारे अपने बच्चों को मार रहे हैं, सबके मियां बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सारे दुकानदार एक दूसरे को काट खा रहे हैं, नहीं है ना। मतलब ये थोड़ा सा जायजा लें, सारे नहीं कर रहे तो फिर बंदा सोचे मैं क्यों कर रहा हूँ।
सही
भाई, जिस ये इस वक्त गर्मी है
जी,
अगर 40 का टेम्परेचर है
जी,
तो 40 के टेम्परेचर आपको भी लग रहा है, 40 का टेम्परेचर मुझे भी लग रहा है,
ठीक है।
अब पसीना आपको कम आ रहा है, मुझे ज्यादा आ रहा है, तो मैं अपना फिजिकल मुआयना करूँ ना। आप गर्मी तो सेम लग रही है, सर्दी सेम लग रही है,
सही।
तो मतलब मैं ये देखूँ कि मेरी मेरा प्रॉब्लम है कहीं, कि मैं इस चीज को क्यों मतलब के सब्र और बर्दाश्त के साथ इस वक्त को नहीं गुजार रहा हूँ। और फिर जो जिन्होंने लड़ाइयां की हैं, झगड़े किए, क्या उनके हालात अच्छे हो गए, क्या उनका रोजगार खुल गया,
और बिगड़ गया होगा।
हाँ, मतलब मैं आपको चार थप्पड़े मारूंगा तो क्या चार घाघ मेरे पास आ जाएंगे,
ऐसा नहीं,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
नहीं,
क्या मतलब मैं आपको मार दूंगा तो क्या मेरी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा,
बिल्कुल नहीं,
तो कुछ भी नहीं है। क्या मैं बीवी पर ज्यादती करूंगी या बीवी शोर से लड़ेगी तो क्या इसके शोर को बोनस मिल जाएगा, कि तुम दोनों लड़े थे इस खुशी में हमको बोनस देते हैं, तो कुछ भी नहीं है,
नहीं मिलेगा,
बल्कि उल्टा मतलब के रोजगार के तो हालात खराब थे, अब घर के हालात भी खराब।
सही।
फिर इंसान जब अपने घर में इफेक्टेड होता है ना
जी,
तो फिर हर जगह इफेक्टेड होता है।
सही।
तो कारोबार की परेशानी घर में नहीं ले जानी चाहिए,
ठीक है,
घर की परेशानी को बाहर नहीं ले जाना चाहिए,
ठीक
है, क्योंकि जो चीज जहां है ना उसको वहीं रखने की आदत पैदा करें,
बेहतर,
ठीक है। घर में भी हम कचरा फैलाते नहीं है, किसी एक जगह पर कचरा जमा कर देते हैं डस्टबिन के अंदर, पूरा घर कचरा कचरा नहीं करते,
ऐसे ही है।
और अगर सारे घर के अंदर कूड़ा कचरा डाल दें तो बंदा रहेगा कहाँ, तो इस तरह मतलब कि परेशानी जहाँ की है उसको वहीं रखें,
ठीक है,
जब तक जिंदा है परेशानी रहेगी, सोचे तो ये कि मरने के बाद भी अगर परेशानी रही तो फिर क्या करूंगा।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, अब तो घबरा के कहते हैं
मर जाएंगे
हम, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे हम।
अल्लाहु अकबर।
तो ये मरने के बाद तो चैन की जिंदगी मिले, कब्र जन्नत का बाग बने। अच्छा, फिर मैं ये एक आपको दरखास्त करूँ कि जितनी भी अभी जैसे कह रहे हैं कि ये इश्यूज है, परेशानी है, तो भाई मैं तो नहीं जानता कि नमाजियों की तादाद बढ़ गई है परेशानियों की वजह से। जो रमजान के नमाजी थे वो जो थे वो भी चले गए बेचारे, मस्जिद है वही खाली के खाली हो गई।
अल्लाहु अकबर।
तो कौन सा हम इस्तिग़फ़ार की तरफ चले गए, तिलावत की तरफ चले गए, रिस्क तो अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में ना, कुशादगी भी वही देगा, हालात भी वही बदलेगा। तो कौन सी हमने इबादत और रियाजतें बढ़ा दी हैं, उसने सुलूक बढ़ा दिया है, सिले रहमी बढ़ा दी है, रब को राजी करने वाले काम बढ़ा दे, या अल्लाह तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ तू मेरे हाल पर रहम फरमा दे, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और अपनी परेशानियां बढ़ाते ही हम चले जा रहे हैं, मगर घरों में और ये सारी चीज़ों को जो खत्म करें और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें।
अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहमत की नजर फरमाए। पैकेज नंबर 9 एक देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या रिपोर्ट है, उस पर इंशाल्लाह राय लेते हैं।
कराची में ईद की तातीलात के दौरान ट्रैफिक हादसात में 70 अफराद हलाक। ईद की छुट्टियां कराची वालों के लिए जानलेवा बन गई। 5 दिन में 70 से ज्यादा शहरी रोड एक्सीडेंट में जाम भाग हो गए। ईद की तातीलात के दौरान कराची में मजमुई तौर पर 4,168 शहरी ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए। 2 सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 दिन में 1,000 से ज्यादा शहरियों की हड्डियाँ टूटी। 3,218 एक्सीडेंट केसेज सिविल ट्रामा सेंटर में रिपोर्ट हुए, जबकि 950 केसेज जिना अस्पताल में रिपोर्ट हुए। डिप्टी डायरेक्टर जिना अस्पताल ने बताया कि जिना अस्पताल में रोड एक्सीडेंट में जान से जाने वाले 60 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी तरफ ट्रैफिक हादसात में मौत के 10 केसेस सिविल ट्रामा सेंटर में रिपोर्ट हुए। रोड एक्सीडेंट का ज्यादातर शिकार होने वालों की उम्र 16 से 30 साल के दरमियान थी। ज्यादातर की हलाकत सर पर चोट लगने के बाइस हुई।
हुजूर, ये तो सिर्फ एक शहर की रिपोर्ट है
और इसमें भी अगर आप गौर करेंगे ना, इसमें शायद वो डिटेल नहीं है, मुमकिन है वो ना भी हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार होंगे,
हो सकता है,
क्योंकि 16 से 30 साल की जो इन्होंने आखिर में बताया ना
जी,
तो ये ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार होते हैं।
ठीक,
और ईद के दिन हो या इस तरह का कोई भी त्योहार हो, ये मोटरसाइकिल सवार, अच्छा सर की चोट का भी इन्होंने कहा
जी,
तो 16 से 30 और सर की चोट, ये खुद बताता है कि ये शायद हो सकता है कि ज्यादातर जो इशू आए वो मोटरसाइकिल की वजह से आए
हो सकता है।
मैं कल भी या परसों, कल की बात है, कल मैं गाड़ी, कल मेरा थोड़ा आउटडोर रूट था, जदवल था, इसलिए कल की बातें इस तरह की सामने आ रही हैं।
ठीक है,
तो मैं ये शारे फैसल है हमारे यहाँ
जी,
मैं वहां से गुजर रहा था, तो शारे फैसल पर मैंने देखा कि तीन सवारी ही भी लीगल नहीं है
जी,
एक मोटरसाइकिल पर तीन लड़के, तीनों नौजवान थे, यही 16 और 20-22 साल की उम्र होंगी।
ठीक है,
तीनों बैठे थे, वो जिस अंदाज पर वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, तो अब मतलब कि गिरे तो ना गिरे तो क्या करे।
बिल्कुल,
अच्छा तीनों के सरों पर हेलमेट भी नहीं है और जिस तरह का मोटरसाइकिल चला रहे थे, अच्छा फिर बाजों का ये कि दोस्त 4-5-6 जा रहे होते हैं अलग अलग मोटरसाइकिलों पर
जी,
तो वो कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैं किस चंद दिनों पहले कहीं से मैं जा रहा था गाड़ी के अंदर, तो सम टाइम में जैसे मैं ही ड्राइविंग भी कर लेता हूँ,
ठीक है,
तो शायद मुझे याद पता, मैं ड्राइव कर रहा था या मैं साथ बैठा हुआ था,
सही,
तो एक मोटरसाइकिल वाला आगे निकला, पहले उसने वन व्हीलिंग की, पांव ऊपर किए और लेकर वो जा रहा था, अब मेरी सांस अंदर के अंदर बार की बार अल्लाह खैर कर, अब गिरा कि अब गिरा। अच्छा फिर उस मोटरसाइकिल सीधी करके निकल गया, अब मैं सोच रहा था कि इसको मैं जाकर रोकू, पूछू थोड़ा तसल्ली के साथ, सलाम दुआ करके, भाईजान कैसे, ठीक है,
सही,
क्या फायदा हुआ,
ठीक है,
क्या क्या मिला,
सही,
वो क्या क्या जवाब देगा। मैं कहा बेटा अगर गिर जाते तो क्या होता, तो ये जवाब देगा गिरा तो नहीं ना, अच्छा नहीं, अल्लाह ताला महफूज रखे, बेटा गिरते तो क्या होता, ये सारी गाड़ियां रुक जाती, आपको अपनी गाड़ियों में बिठा दी क्या, भाई ये कहते हुए निकल जाता, रेलू शादी कर रहा था, कोई हमदर्दी नहीं करता आपके साथ, बल्कि आपकी इस हरकत पर लोग आपको थूथू करते,
ऐसे ही
फिर घर वाले आपको अस्पताल लेके जाते, फिर आप अल्लाह ना करे अगर माजूर हो जाते तो क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ये सड़कों पर नजर आ रही होती हैं। अब ये कि ये तबका सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, अब हमारा तो ये अजीब व गरीब है कि सुनते ही नहीं है। इसमें मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर हमारा जो अब ये खैर ख्वाही के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको मजीद सीरियस होना चाहिए, जो हमारा ट्रैफिक का जो अमला है
जी,
ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर होते हैं,
ठीक है,
कि वो मतलब इस तरह की कोई भी रोडों पर जो करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं रोडों पर,
ऐसे ही है,
तो कोई मतलब के इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा इसको सख्ती का मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर शरीयत इजाजत देती हो ना, तो इन नौजवानों को लेकर
जी
बड़ी मतलब इज्जत और तमीज के साथ इनको थाने ले जाया जाए और 3 दिन के लिए इनको लॉकअप में बैठाया जाए, 3 टाइम का खाना खिलाएं, चाय वाय पिलाएं, ठीक है, मगर 3 दिन तक इनको छोड़ा ना जाए, मोटरसाइकिल भी इनके अंदर होनी चाहिए,
सही,
और इन वाकियात को अगर शरीयत इजाजत देती हो तो वायरल होना चाहिए, सब्जेक्ट टू शरीयत की परमिशन,
ठीक है,
पर मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है।
अगर इस तरह की जो उसूल बना, अच्छा ये बातें मैंने मुल्क की सत्ता की जो कानून और इस तरह की चीजों की जो अथॉरिटीज होती हैं, मैंने उनसे डिस्कस की है,
ठीक है,
उनके पास जाकर डिस्कस की है,
ठीक है,
कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रैफिक को दुरुस्त करना, रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि दुनिया में ट्रैफिक सही है,
ठीक है,
मजाल है किसी की कि जो इधर से उधर हो जाए। अब जब कल की बात है, मेरे साथ एक साथ गाड़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि तो उनको ये ट्रैक मैं बता रहा था कि ये ट्रैक इसलिए होता है, ये ट्रैक इसलिए होता है, फोक लाइट इसलिए होती है,
सही,
फला ट्रैक फोक लाइट फोक के अंदर इसलिए काम कर रहा होता है, तो वो यही कह रहे थे कि लोगों को पता नहीं है, तो पता नहीं तो पता होना चाहिए ना आपको, आप ट्रैफिक जब आप गाड़ी चला रहे हैं सड़कों पर, अकेले तो है नहीं,
ऐसे ही है,
अकेले तो है नहीं, वो रेगिस्तान के अंदर आप मतलब कि सफारी तो कर नहीं रहे,
ठीक है,
आप रोड पे चला रहे हो तो आपने अपनी और दूसरों की जानों के तहफ्फुज़ के साथ चलना है ना,
बिल्कुल ऐसा
ना, ये किसी मतलब कि एम्यूजमेंट पार्क के अंदर लगी डोजिंग कार है बच्चों की, एक दूसरे को जितनी मतलब कि यू यू करके आप चलाते रहेंगे,
किसी को कुछ,
सड़क है, ट्रैक बने हुए हैं, तमीज से चलना है। मोटरसाइकिल वालों को ये नहीं पता कि हमारा ट्रैक कौन सा है, गाड़ी वालों को ये नहीं पता कि हमारा ट्रैक कौन सा है, साइड लेफ्ट साइड पर टर्न करने वाले, राइट साइड पर टर्न करने वाले को ये नहीं पता कि हमारा ट्रैक कौन सा है, तेज नॉर्मल जो एक लीगल स्पीड है उसके साथ जाने वाले या स्लो चलने वाले को ये नहीं पता हमारा ट्रैक कौन सा है, डबल इंडिकेटर कब देना है ये नहीं पता होता। तो इस तरह की चीजें हमारे वो नोटिस में हैं भी नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर जो हो रहा है वो ये हो रहा है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा अगर कोई इस तरह का अथॉरिटीज अगर देखो सुन रही है तो जो इलीगल जो भी मतलब के मैं यूं समझे कि जो कानून तोड़ते हैं ट्रैफिक का
जी,
उनको अगर इस तरह अगर कोई उसूल बनता हो और शरी इजाजत की सूरत में अगर बनता हो कि जैसे आप तो चालान कर देते हैं ना 50 रुपया 100 रुपया, वो भी कब चालान होता है कि जब अगला रिश्वत ना दे, वरना 500 रुपये के चालान को 200 रुपये रिश्वत लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको पता है 200 रुपये में छूट जाऊंगा 100 रुपये में छूट जाऊंगा। कानून कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून है उसके मुताबिक अमल दरामद होना जरूरी है। अब एक शख्स है जिसने सिग्नल तोड़ा है, सिग्नल तोड़ा बिल्कुल, उसको लें तमीज से, उसको 2 दिन के लिए मेहमान बना लें अपना, और कोई मारपीट करने की कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं, ना कोई सोर्स उसको छुड़ा सके ना कोई सिफारिश उसको छुड़ा सके, ऐसा कोई हो किसी ने मतलब कि वो और कोई कानून तोड़ा है बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो उसके साथ 7 दिन वाला अमल कर लिया कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने तो लाइसेंस ही नहीं लिया है और आप इस तरह मतलब के कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भी एक इलीगल अंदाज पर जो ट्रैफिक का जो करते हैं, यकी अपनी और दूसरों की जानों से खेल लेना, इनके वालिदैन के लिए भी ये वो है कि मतलब के बच्चे अंदर रहेगा तो फिर कल माँ बाप भी बच्चों को करेंगे, लेकिन फिर ये हो मुस्तकिल जबकि शरीयत इजाजत देती हो, ये हो मुस्तकिल मतलब ये वक्ती जो जोश व जज्बा ना हो। तो हमने दुनिया के कई मुल्कों में मेरा जाना हुआ है और मैं नहीं कहता कि कई मुल्कों की ट्रैफिक इससे बदतर नहीं, हमारे यहाँ से बदतर ट्रैफिक भी मैंने देखी है, वही यहाँ पर कानून पर अमल दरामद नहीं है, सारे साइडों में खड़े हुए और वो हो रहा है जो कुछ हो रहा है, जब दुरुस्त नहीं है जो कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह का अगर कोई निज़ाम हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये दो ये चंद केसेस हो जाए, ये इम्प्लीमेंट हो जाए और बाकायदा इसकी मतलब तशहीर हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये हो रहा है। अब देख लीजिए बगैर हेलमेट वाले मोटरसाइकिल वालों का होता है, यानी हम दावत इस्लामी वालों ने तो यहाँ तक कहा हुआ अमीर सुन्नत ने कि भाई आप इमाम शरीफ अपनी थैली में डालें और हेलमेट पहने,
बिल्कुल,
और अपने सर की हिफाजत करें। तो ये वाकया छोटे नहीं है, ऐसे हादसा के बहुत सारे हमारे रिपोर्ट
ऐसी है। हुजूर मैं अपना एक छोटा सा वाक्य वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। मोटरवे पर जाना हुआ हमारा और यूं था कि वहां पर जो एक बड़ी गाड़ी थी वो गुजरना चाह रही है लेकिन एक आगे छोटी कार है जिसमें मनचले बैठे हुए नौजवान हैं और वो उसको रास्ता नहीं दे रहे, और जैसे ही वो फिर आगे होता है राइट मुड़ता है तो फिर ये राइट यानी जो फास्ट ट्रैक है उस ट्रैक पर वो चल रहे हैं। अब वो इस तरह करते कराते खैर कोई हादसा तो नहीं हुआ, अलबत्ता उसकी जो परेशानी थी कुछ देर के लिए सवारियां जो बस में थी वो भी फेस कर रही थी और आगे जो है वो कार वाला जो इस तरह
पता नहीं है, हमारे साथ भी होता है कि पीछे से आ रहे हो तो उसको लाइट दे रहे होते हैं कि भाई मुझे गुजरना है आप हो, तो क्योंकि मैं जिस साइड से उसको ओवरटेक कर सकता हूँ लीगली मैं उसी से ओवरटेक करूंगा, उसको यही नहीं पता कि भाई ये मेरे को क्यों लाइट दे रहा है,
बिल्कुल,
वरना वो लाइट दे आगे आगे वाला इंडिकेटर देगा और फिर मैं उसको मतलब कि बाईपास करूंगा।
सही,
मगर हकीकत ये कि रूल्स को फॉलो करेंगे तब जब हमें रूल्स भी पता होंगे, तो रूल्स ही नहीं पता तो रूल्स फॉलो कहाँ से होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। इसी से रिलेटेड एक और रिपोर्ट हमारे पास है, 10 नंबर पैकेज है हमारे पास, अरब शरीफ में कुछ खौफनाक हादसा हुआ है, क्या हुआ है ये दिखाइए।
अरब शरीफ में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 भाई जा बहक। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले दिगर 3 बहन भाइयों और वालिदैन को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अल्लाह अकबर,
ये इसी तरह ही। अच्छा, सारे हादसे इसी वजह से होंगे, जिसका हादसा हो उसने बेहतियाती की, ऐसा नहीं है। मतलब आपकी गाड़ी सिग्नल पर खड़ी हुई है,
ठीक है,
और पीछे से आदमी आया ठा करके मार दिया,
अल्लाह,
ऐसा हुआ है और होता है, और पीछे से गाड़ी आई, पता चलता है वो मोबाइल में लगा हुआ था।
सही।
आपकी गाड़ी सही पार्किंग में खड़ी हुई है, वेट कर रहे हैं फैमिली का, ट्रक आई सीधा उड़ा कर चली गई, मोटरसाइकिल वाला आया अंदर घुस गया, तो ये चीजें भी पॉसिबल है। तो अब ये जाहिर बात है कि होता वही है जो रब को मंजूर होता है, वही होता है। तो बाज़ वक़्त इस तरह के वाकयात भी हो रहे होते हैं।
सही।
यानी आप देखिए कि कंटेनर गाड़ी पर गिर जाता है,
अल्लाह अकबर जी,
अब हाईवे पे जा रहे हैं, आपका कंटेनर आपकी गाड़ी पे गिर गया। अच्छा, कंटेनर गाड़ी पे, कंटेनर ट्रॉलर से गिर नहीं सकता बेसिकली, ये मैं आपको बता दूं।
ठीक है।
मैं पहले भी मदनी चैनल पे बता चुका हूँ कि कंटेनर, जिस ट्रॉलर पर कंटेनर रखा जाता है या जिस ट्रक पर कंटेनर रखा जाता है, उसके अंदर क्लिप्स होते हैं जो कंटेनर को बिल्कुल ग्रिप करके रखते हैं। कंटेनर गाड़ी मतलब पूरा ट्रक या पूरा ट्रॉलर उल्टेगा तब तभी शायद कंटेनर उससे ना निकल सके, इतनी वो उसकी
मजबूत होती
है। तो मैं तो इस फील्ड में रहा हूँ।
अच्छा।
तो मुझे पता है कि ये किस तरह का होता है।
सही।
मगर यहाँ के कंटेनर ट्रक पर रख दिए, रस्सियां बांध दी,
हाँ जी,
तो ये कर दिया, अब एक रस्सी क्या कंटेनर पकड़े। ये
अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए और हमारे हाल पर भी जो है वो रहमत की नजर हो। मजीद इंशाल्लाह मजीद भी खबरें शामिल करते हैं ऐसा। इसी के साथ एक मेरे पास एक रिपोर्ट है जो कि तारिकीने वतन से मुतालिक है, यानी ये जा रहे थे इलीगल तरीके से जा रहे थे, गाड़ी स्पीड में आई और इन पर चढ़ गई, ये एक हम तक ये खबर पहुंची है, ये अमरीकी रियासत से मुतालिक।
इलीगल के ताल्लुक से हमने लास्ट प्रोग्राम किया था ईद के दिनों में
जी,
शॉर्टकट के नाम पर
जी, ऐसा ही है।
तो लेकिन ये तो एक एक्सीडेंट है और ये शायद इलीगल होंगे, तो अब ये भी नहीं समझ पड़ेगी अब इनको रखे कहाँ, संभाले कौन, इनके पेपर होंगे नहीं होंगे, इनके अत्ते पत्ते, इतना प्रॉब्लम होता होगा इनका बेचारों का, ये भी हमारे लिए तो इबरत ही इबरत है।
सही।
ऐसे में हमेशा अपने पास अपनी कोई आईडी होनी चाहिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो आपके जब जेब से कोई ऐसी चीज निकलनी जरूर चाहिए जिससे आपकी पहचान पता चल जाए।
सही।
और दूसरे को ये पता चल जाए, यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके जेब में कोई ऐसा कार्ड होना चाहिए, आपके वॉलेट में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें ये हो कि इन केस इमरजेंसी प्लीज कॉल दिस नंबर, यानी कि उस नंबर पर कॉल की जा सके। ये भी बैठे बैठे जहन में आया है कि कोई खुदा ना करे ऐसा हादसा या वाकया हो जाए तो आप, क्योंकि आपके मोबाइल से किसका ना, बाज़ों का तो मोबाइल ही टूट फूट का शिकार हो जाता है। अच्छा, जेब से कोई चीज़ निकलती ही नहीं है, शनाती कार्ड अगर निकलता है तो पता ही नहीं होता कि इस आदमी का रब्ता कहाँ से करें, और फिर ये होता है कि फिर इसको कहीं और पहुंचा देते हैं, फिर वो उसका नादरा से या किसी भी जगह से इसकी पूरी वो निकालें, इतने बहुत लेट हो जाता है। तो सम टाइम ऐसा हो भी सकता है जो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे आप रास्ते में गिर गए, आप बेहोश हो गए या कोई ऐसी सूरत हो गई या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस मैटर हो गया, तो आपके किसी भी जेब से पॉकेट से कोई ऐसी चीज़ निकल आए कि जो भी आपको फर्स्ट जो आपका अटेंडेंट है वो आपकी वो जगह देखे और आपको बोले, या आपके पास इतना होश है तो आप कहते हैं कि यार प्लीज इस नंबर पर कॉल कर लें, तो ये एक चीज अपने साथ रखी तो जा सकती है।
सही।
अगर ये मेरे बैठे बैठा है बात जहन में आई है, अगर ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर है, और ऐसा नंबर उसमें रखें कि जो उठ भी सकता हो। अब जो आपका ही नंबर नहीं उठाता तो वो किसी अननोन का नंबर कहाँ से उठाएगा, तो बाद वक्त फिर ये होता है कि वो नंबर डायल तो करने वाले करते हैं लेकिन अटेंड तो हो नहीं रहा होता, क्योंकि वो डेफिनेट वो अननोन नंबर होगा जिसे कोई और कॉल करेगा, तो वो अननोन नंबर होगा, तो ये हो जाता। अच्छा, कभी इस तरह का अननोन नंबर से फोन आ जाए आपको, अब ये बात पर एक और बात याद आई
जी,
तो उस पर फौरन यकीन नहीं कर लेना चाहिए, उससे उसके साथ चार सवाल करके आप तहकीक कर ले कि भाई कुछ बता दे, कोई वीडियो बता दे कहाँ है कौन है, वरना वो तो आपको अननोन नंबर से कोई भी कॉल आ जाएगी कि आपका फला आदमी यहाँ पर परेशान है जरा पहुंचिए, और आप पहुंचेगा तो पता चलेगा आपका हिसाब किताब पूरा हो गया।
अल्लाह हू
अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पैकेज नंबर 15 दिखाइए क्या है उसमें रिपोर्ट, इंशाल्लाह फिर उस पर रहे।
पाकिस्तान हर साल $4 अरब की खुराक ज़ाय कर देता है। पाकिस्तान में हर साल $4 अरब की खुराक ज़ाय होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में हर साल $4 अरब की खुराक ज़ाय कर दी जाती है। दस्तावेज़ात में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में सालाना मुल्क की पैदावार की तकरीबन 26% खुराक ज़ाय हो जाती है। मुल्क में खुराक का सालाना ज़ाय 19.6 मिलियन टन है। दस्तावेज़ में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में सेहत बख्श गिजाई अशिया की ज्यादा मकदार बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकज पर जाया हो जाती हैं।
$4 अरब
जी,
एक ऐसे मुल्क की रिपोर्ट है जिस मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद वो है जिसे गिजाई किल्लत का सामना है।
ऐसे ही
खुराक महंगी है, आटा महंगा है, चावल महंगा है, दाल महंगी है, दूध महंगा है, अशिया खुर्दोनोश जिसको हम बहुत गाड़ी उर्दू में बोलते हैं ये महंगी है और वाकई महंगी है। मगर जरा इस तरफ भी तो गौर करें कि $4 अरब का खाना जब जाया किया जाएगा, अगर ये बचा लिया जाए, चले $4 अरब का खाना हम कह सकते हैं कि चलो ये कोई हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर फिगर ना भी हो, क्योंकि मेरी जब ये रिपोर्ट सामने आई तो मैंने कहा यार इतना खाना जाया होता है, लेकिन अगर इसका आधा भी लें तो आधा भी तो कम नहीं है ना, एक जर्रा भी क्यों, एक दाना भी क्यों। तो ये तो ज्यादातर तो मुझे लगता है कि दावतों में भी, फिर इसके अलावा कुछ अनाज जमा करते करते जो गोदाम वो भरे हुए अनाजों के, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना खाना जाया होता होगा, स्पेशली दावतों में खाना बहुत जाया होता है। ये तो मेरी इत्तलात है कि लोग निकालते हैं, और जैसे कि हाल ही में एक दावत के बारे में पता चला कि उस दावतों में कोई मतलब मीठा काफी था, पेस्ट्रियां वगैरह केक वगैरह रखे गए होंगे, तो पता चला कि इतना जमीन पर ये बिखरा हुआ था। तो लोगों खाना कैसे खाना है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खाना खाना कैसे खाना, मतलब पहले तो खाने पर टूटना है ना,
अल्लाह
पूरी तैयारी के साथ खाने पर, जैसे कि धावा बोलना है ना कि तू था किधर ना इतने दिनों से, ये देखने को मेरी आंखें तरस गई थी,
आवाज आने की देर है
बस। अब तो मतलब खाने पर टूटे ना
जी,
टूट कर मतलब कि बस इतना ले लिया कि बस जैसे कि एक महीने का खाना एक साथ खाना है।
सही।
अब खाना खाने के बाद तो थोड़ा बहुत खाया खाया ये कह दिया टेस्ट सही नहीं है, ये यार ये सख्त बहुत है, ये गर्म नहीं है, ये ठंडा होना चाहिए था ये ज्यादा, यूं कर करके हर चीज आगे पीछे कर दी। और एक दावत जिसमें मिसाल के तौर पर 10-12-15-20 लाख का अगर खाना खिलाया गया है
जी,
उसमें लाख पता नहीं लाख 2 लाख का खाना जाया होता तो कोई ताजुब नहीं है, परसेंटेज निकाली जा सकती है। एक एक रात के अंदर, एक एक दिन के अंदर कितनी कितनी दावतें होती होंगी, तो पाकिस्तान का तो दुनिया भर का पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो आप जरा सोचिए कि इतना खाना जाया होता है और उसके बाद हम रिस्क की तंगी को रो रहे हैं। हदीस पाक याद आती है कि आयशा रोटी का इकराम करो, ये जिस कौम से जाती है पलट कर नहीं आती। तो अल्लाह की नेमतों की कदर करनी चाहिए, नेमत को जाया करने से बचना चाहिए, कि जब बंदा नेमत की कदर नहीं करता, नेमत को जाया करता है तो उससे वो नेमत छीन ली जाती है।
अल्लाह अकबर।
तुम्हारी हालत तब तक नहीं बदली जाती जब तक तुम खुद अपनी हालत को ना बदलो। तो ये बड़े मतलब के कानून और एक अटल कानून है, यानी कि ये बने हुए कानून, ये बने हुए उसूल हैं शरीयत और दीन के, ये उसूल नहीं बदलेंगे। ये याद रखिए, आपको मुझे बदलना पड़ेगा। हम जब भी किसी नेमत की कदर नहीं करेंगे वो नेमत हमसे छीन ली जाएगी। हमने पानी बिजली, हमने कितनी इसकी नाकतरियां की है। अब असबाब जो भी बनेंगे, अब असबाब को ठीक है, अब हम असबाब को रोना शुरू कर देंगे, लेकिन पीछे से क्यों नहीं आते कि यार मैंने कदर नहीं की थी, मैंने कदर नहीं की। यानी कि एक आदमी खुशहाल है, माली तौर पर स्ट्रांग है, और अगर वो तंगदस्त हो जाए और उसकी तंगदस्ती के पीछे माल को उड़ाना जाया करना था, तो कहते कि अब उसको चाहे किसी और को बुरा ना कहे, वो अपनी ही मतलब के वो जो फजूल उड़ाना था उसी को वो कोसे। तो अल्लाह करे कि इस रिपोर्ट पर हम सबको कुछ समझ आ जाए और हम ये जो फजूल उड़ाना था, माल जाया करना था या ये खाना जो जाया करना था, अब घर से स्टार्ट तो लेना। हम कहाँ अभी दुनिया को मैं आपको घुमाऊंगा और हर दावत का मैं आपको बोलूंगा कि ये सब कुछ लें। आप अपने घर से स्टार्ट ले लें, अपने किचन में जाकर अपने बावर्ची खाने, अपने जो खाने के पतीले हैं उसको चेक कर लें आप, ये चावल कितना इसके ज़ाया हो रहा है, सालन कितना ज़ाया हो रहा है, प्लेटों में कितना ज़ाया, और दस्तरखान में कितना ज़ाया हो रहा है, ये आप खुद ही देख लें। एक एक घर से अगर थोड़ा थोड़ा भी ज़ाया होता है तो आप सोचिए कि पूरे महल्ले से कितना ज़ाया होता है, और फिर एक शहर से कितना ज़ाया होता है, फिर एक मुल्क से कितना ज़ाया होता है,
अल्लाह अकबर।
और आप देखिए कि दावतों में कितना ज़ाया होता है। अगर ये पूरा हिसाब किताब बनाए तो ये बनेगा बड़ा फिगर ही। और जो जितना खाना ज़ाया हो रहा है इसमें से कितना खाना ऐसा था जो खाने के काबिल था और अच्छा खाने के काबिल था, अगर ये उन तक पहुँच जाता जो खाने से बेचारे महरूम है, तो बच्चा आप बताएं कि फिर हमारे मुल्क में ऐसा कौन आपको बंदा मिलेगा कि जो भूख की वजह से परेशान हो जाए, जब खाना तो पहुंच ही जाएगा। इसकी कॉस्टिंग पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा खाने की, कि खाना जो ज़ाया हो रहा है इसकी कॉस्टिंग कितनी है। यानी बाज़ खाने तो ऐसे होते हैं जो 50 रुपये का होता है,
सही,
यानी वो एक ही प्लेट 50 रुपये की है, और वही एक खाना एक ही प्लेट 500 रुपये की है, वही एक खाना एक ही प्लेट 1500 रुपये की है। तो अब जैसी गिज़ा बीफ है, मटन है, फिश है, कोई और ऐसी चीज़ है वगैरह वगैरह, तो ये सब देखना पड़ेगा कि जो खाना ज़ाया हो रहा है इसकी कॉस्टिंग किस किस लेवल का खाना है। सस्ता खाना, अब खाना सस्ता हो या महंगा हो, अगर वो खाने के लायक है, खाने के काबिल है, तो ज़ाया होने के बजाय किसी के पेट में ही जाना चाहिए ना। और फिर इससे जो खराबियाँ बर्बादियाँ पैदा हो रही है, जो नेमतों का ज़िया हो रहा है, फिर नेमतों का हमसे छीन जाना, नेमतों का हमसे ले लेना वापस, ये क्या कम नुकसान आते हैं। तो अपने घर के अंदर, अपने दस्तरखान के अंदर इसका जायजा लें, एक एक हड्डी एक एक बुट्टी को मतलब कि उसका मतलब के निज़ाम बनाएं, और आप अपने बच्चों की संदा से तरबियत करें कि खाना ज़ाया होने से बचे। दूध ज़ाया हो जाता है, पानी ज़ाया हो रहा होता है, मशरूब ज़ाया हो रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़ाया कर रहे होते हैं, जूसेस ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आप ये पूरा जायजा तो ने अल्लाह मतलब बंदे का दिमाग काम नहीं करे कि क्या मतलब कि कौम ने खाने पीने की चीज़ें ज़ाया करने की कसम खाई हुई है कि नहीं यार इतना तो ज़ाया करूँगा यार, कसम खाई हुई है हम लोगों ने, यार कोल्ड ड्रिंक इतनी तो छोड़ूंगा, फला चीज़ इतनी तो छोड़ूंगा मैं, कम अज़ कम खाना साइड में इतना तो छोड़ के खड़ा होना चाहिए यार, ये तो मेरी कसम है ना, नहीं करूँगा तो कसम टूट जाएगी माशाल्लाह, चोट कर रहा हूँ, हमने कसम खा ली है चीज़ों को ज़ाया करने की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब दुनिया भर की क्या मतलब कि आपसे वो डिस्कस करूं, कम से कम अपने घर का ही जायजा ले लें, मतलब यार फर्ज से माशरा बनता है। तो अगर आपको बातें हमारी समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि नहीं बात है, तो फिर इसको प्रमोट करें, इसको लेकर चलें, आप खुद इसके दाई बने, जिस दावतों में जाते हैं उन दावतों में आप दाई बने, उन दावतों को समझाएं, उन दावतों को सिखाएं, उनको वहां समझाएं। हमारी दावत इस्लामी की वीडियोस हमने बनाकर आपको दी हुई हैं, वो अपनी दावतों में चलाएं, तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है वो वीडियोस देकर कईयों का माइंड बनेगा। और वैसे ही मतलब कि भूख के मारे हालत ख़राब होती है कौम की, और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे सब्र करवा कर बर्दाश्त करा कर हम खाना खोलते हैं कि जना धूल्हा आया नहीं, अब धूल्हा खा पी कर आएगा, धूल्हे का क्या प्रॉब्लम है यार,
सही।
तो जना फोलना नहीं आया, ये नहीं वो नहीं आया, अब जो एक डेढ़ घंटा पहले आया है उसको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि जो मेन आदमी था ना वो अभी तक आया नहीं है, अब जो लेट आया है उसके लेट आने पर उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो जल्दी है उसको सज़ा इस बात की दी जाएगी कि आप जल्दी क्यों आए, हमने 10 बजे का लिखा था आपको किसने कहा था 10 बजे आने का, हमने 9 बजे लिखा था, आप पागल वागल हो गए, आप कार्ड में 9 पढ़कर आप आ गए, आपको नहीं पता कि हम जबान के पाबंद नहीं है, आप अजीब दीवाने आदमी है, भूखे आदमी है कि आप टाइम पर यूं टाइम पर मुँह उठाकर आ गए आप, ठीक है हमने कार्ड पर लिख दिया 10 बजे का 9 बजे का, तो आपको नहीं समझ आती कि 10 बजे लिखने का मतलब 10 नहीं होता।
अल्लाहु अकबर,
आप अजीब आदमी, ये ऐसा कोई भरोसा करता है क्या किसी के ऊपर, तो क्या गेट पर आप उसको पहले 10 मिनट क्लास लेंगे, यार आप 10 का मतलब हो जाए 10 बजे आ जाए, देखो आ रहे ना 11:30 बजे, कैसे समझदार सुलझे हुए लोग हैं, 11:30 इनको पता है कि 11:30 बजे जाएंगे तो होगा काम, और अब 11:30 बजे खुलेगा ढक्कन, 1.5 घंटा आपने इंतजार किया, अब वो जो इंतजार किया 1.5 घंटा उसका बदला वो तो कहीं ना कहीं तो निकालेगा, और वो जो 11:30 बजे आया छोड़ना तो उसने भी कुछ नहीं है, जो कुछ कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ किस लिए कह रहा हूँ अंदाज क्यों ये अख्तियार किया हुआ है, समझदार आदमी समझ सकता है।
अल्लाह
क्यों यार क्या कर रहे हैं आप लोग, तो मेहरबानी करें और इन चीज़ों को दुरुस्त करें। इंतजार घरों की दावतें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, वहाँ तो चलो दो चार आ ही रहे होते, घरों की दावतों में 3 बजे का टाइम दो, ये रात 9 बजे का टाइम दो, तो आ ही नहीं रहा होता कोई भी, अजीब हालत होता है। तो टाइमिंग की पाबंदी, खाने का ख्याल, और लगे कि कोई भूखा खाना नहीं खा रहा, मतलब एक इज्जतदार तमीज़ वाला आदमी तमीज़ से निकाल कर और एक अच्छे और डिसेंट और एक اچھے انداز سے کھانا کھا رہا ہے, اور شریعت و دین کے مطلب کہ احکام اور اس کی جو تعلیم و تربیت دین کی اس کے مطابق وہ کھانا کھا رہا ہے, پلیز آتے ہوئے اپنی عزت تو بچا لیں.
اللہ
آپ اپنی عزت بچائے کھانا خود ہی بچ جائے گا.
اللہ اکبر. صاحب اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں ریز کرنا چاہوں گا کہ کھانے کو آپ نے سیو کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے ہیں اور کس طرح سے کھانا چاہیے اس پر بھی آپ نے ہم سے بہت خوبصورت انداز سے اپنے کلمات ادا کیے ہیں. یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کھانے کو اسٹور کرنے کے ایک فقدان پایا جاتا ہے, کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھانا اگر اتنا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کو رکھے کہاں کہاں, اس کو سیف کیا جائے اسراف سے؟
سیف نہ کریں, ہمارے یہاں بہت سارے ایسے علاقے اور ایریاز یا ایسے ادارے ہیں جہاں پر کھانا دیا جا سکتا ہے, ان کے پاس انتظام ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو آپ کھانا وہاں پہنچا دیا کریں.
صحیح,
ماشاءاللہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے کھانے کو محفوظ کر لینا ہے. گھر میں بھی اگر آپ کا کھانا بچا ہوا ہے تو, اور اگر آپ اللہ نے وسعت دی ہے,
ٹھیک ہے,
تو آپ کھانا کسی مستحق تک پہنچا دیں. گھر میں یار بڑے بڑوں کے گھروں میں کھانا بچا ہوا ہوتا ہے, اور جن کے گھر میں مالی بھی ہے, جن کے گھر میں ڈرائیور ہے,
صحیح,
جن کے گھر میں چوکی دار ہے, جن کے گھر میں میڈ ہے, ماسیاں ہیں یا ملازم ہیں, یہ سب گھروں میں ہوتے ہیں.
صحیح,
ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کوئی تازہ چاول بنا کے تو بریانی دیں گے تو گھر لے جائیں گے.
ٹھیک ہے,
کبھی فرمائش نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو ہم مطلب کہ یہ تو نہیں لے جائیں گے, ہم کو فش فرائی دیں گے تو ہم گھر لے جائیں گے.
ٹھیک,
تو کبھی کسی نے نہیں کہا. اب آپ کے پتہ آپ کے گھر میں کھانا بچا ہوا ہے تو کھانا ٹھیک ہے, اگر آپ رکھے تو ٹھیک ہے.
صحیح,
اور لیکن میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ رکھنے کے بجائے آپ کو اللہ نے وسعت دیا ویسے ہی رکھا رہے گا, اور گھر میں کوئی عموماً کئی گھروں میں ایسا ہے کہ وہ بچا ہوا کھانا گھر میں بس کھاتے نہیں ہے, فریج میں پڑے 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 پھر یہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ پھٹا پرانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوں مطلب کہ پھر اس کو آپ ان کو دے دیں گے تو یہ گھر جائیں گے دو نوالے یہ کھا لیں گے, ان کے بچوں کے پیٹ میں چلا جائے گا, آپ کو دعائیں دیں گے تو اللہ پاک آپ کے کھانے میں رزق میں اور برکت عطا فرما دے گا.
سبحان,
تو یوں ایک ایک گھر تین تین چار چار پانچ پانچ گھروں کا ایک ایک دو دو ٹائم کا کھانا, وہ بھی وہ کھانا کہ جو یہ کھا چکے اب جو کھانا بچ گیا ہے وہ دے سکتے اور وہ خوشی خوشی لے جائیں گے.
ٹھیک ہے,
یہ لے جاتے ہیں. اب دیکھیں دعوتوں میں ویٹر بچا ہوا ہی کھانا لے جاتے ہیں نا,
ایسے ہی ہے.
اب یہ چار بازیوں سے لے جائیں سے اچھا نہیں ہے کہ ان کو آفیشل لیگلی دے دیں آپ.
ٹھیک ہے,
ورنہ یہ چوری چپے ہو ادھر ادھر بوٹی ڈالی ادھر تکا ڈالا ادھر فرائی ڈالا ادھر تھیلی بھری اور پھر مطلب اس طرح چپ چپا کے لے جاتے جو ان کے لیے بھی لے جانا درست نہیں ہے.
صحیح,
نہیں ہوتا ہوگا جو میرا گمان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو اپنے مطلب کہ یہ دے دیں. اس پر بھی میری کل پرسوں یہ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم یوں بچائیں, میں نے کہا بچا کر اپنے لیے بچائیں, اچھا بچانا بھی اپنے لیے.
ٹھیک ہے,
وہ ٹھیک ہے ایک جہت پر دیکھا ہے تو یہ بھی چلو ٹھیک ہے کہ کل ایسا حالات پیدا ہو تو, لیکن اگر بچ گیا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے پاس تو نیکسٹ بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی طرف دے دیں تو اللہ پاک آپ کے اس بچانے کے بعد اسی کی اس کے پیارے حبیب کی دکھیاری امت کے لیے جو آپ نے وہ چیزیں آگے بڑھا دی تو اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دے گا.
صحیح,
یہ سب تھاٹ سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
اللہ,
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تعلق سے اچھا سوچیں, اللہ کی رحمت صاحب کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا.
اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرمائے اور غریبوں کا مددگار بنائے. ایک اور ایشو ہے حضور ہمارے معاشرے میں, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل گیمز ہیں, اور ان کا طلاقوں کا جو ہے وہ اس کا ایک ریشو بڑھتا جا رہا ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس پر ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کی انشاءاللہ رائے لیں. جی,
سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیمز طلاق اور خلع میں اضافے کا اہم سبب. طلاق اور خلع کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیمز کا عادی ہونا ہے. اگر میاں یا بیوی دونوں ڈیجیٹل گیم کے عادی ہو جائیں تو وہ گھر اور بچوں پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے.
اللہ اکبر.
میرا خیال ہے میں تو کہتا ہوں یہ رپورٹ ہی کافی ہے ایک منٹ کی سمجھنے والوں کے لیے.
اچھا,
اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہمارا پروگرام اور اس نے یہ عادت اختیار کی ہوئی ہے, یا کل سوشل میڈیا پہ اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں انہوں نے یہ عادت اختیار کی ہوئی ہے اور ایک وہ میرڈ لائف ہے, مطلب ایک شادی شدہ زندگی ہے, تو اس موبائل کے ذریعے اپنی شادی شدہ زندگی کو جو تباہ کر رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ مطلب کہ جب شوہر اپنی بیوی سے کسی قسم کی امید رکھتا ہے تو وہ وہاں پر مصروف ہے, یا کوئی اور اس نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پالی ہوئی ہے.
صحیح,
اور وہ اپنے شوہر کے اس جو ایک ایک ضروری ایک معیار ہوتا ہے
جی,
ایک نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں, اس پر وہ پورا نہیں اتر پا رہی. اسی طرح جو شوہر سمجھتا ہے کہ میں بس بیٹھا ہوا ہوں, اس طرح کی چیزوں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا.
صحیح. کہ
پھر وہ نہ کام کاج پہ توجہ, نہ گھر پر توجہ, نہ بی بچوں پر توجہ, نہ دنیا کی کوئی پرواہ, نہ آخرت کے برباد ہونے کی کوئی سوچ. تو ظاہر ہے پھر ایسوں کے گھر ٹوٹتے ہیں. یہ اچھا, یہ آپس کی لڑائی کو اس کا بیس بنائیں گے.
ٹھیک ہے,
ہم لڑتے ہیں, یہ برداشت نہیں کرتے ہوئے کہ یہ سنتا نہیں ہے, مگر وہ اس چیز کو ختم نہیں کرے جس کی وجہ سے اس کی قوت برداشت ختم ہو رہی ہے اور اس کا سننا ختم ہو رہا ہے. وہ عادت, غلط عادت نہیں چھوڑنی. یعنی میں بری عادتیں لے کر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری بری عادتوں کے ساتھ آپ بس کچھ بھی ہو میرے ساتھ نبھاؤ. یعنی میں اپنی بری عادتیں چھوڑو نا, میں آپ ہی کو کیوں مجبور کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح نبھاؤ. نبھانا ہے,
صحیح,
گھر ٹوٹنے نہیں دینا.
ٹھیک ہے,
لیکن اب گھر ٹوٹنے کے ایسے بھی مطلب ایسے حالات بھی تو پیدا نہ کریں نا کہ مطلب کہ بندے کو اگر آکسیجن ہی نہیں ملے گا تو وہ سانس لے گا کہاں سے, وہ جیے گا کہاں سے. تو گھر میں اندر اولاد بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھوں, بات چیت کروں. اچھا پھر یہ تو بچا, دونوں تو چلو لگے لگے بچے کو بھی لگا دیا گئی بھائی, تو تم بھی ویڈیو گیم لے کر موبائل لے کر بیٹھ جاؤ, ہمیں تنگ نہ کرو. تب پورے کے پورا گھر جیسے کہ مطلب کہ موبائل ہاؤس بنا ہوا ہے, کہ بچہ اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہے تو بیوی اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے, تو شور اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو آپس کی لائف کہاں ہے آپ کی, آپ کی اپنی زندگی کدھر چلے گی؟ سب کو موبائل کی نظر کر دیا, سب کو تفریح انٹرٹینمنٹ چاہیے. اب اس پہ لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے اپنی کردار میں حسن اخلاق اور اٹریکشن پیدا کریں.
اچھا,
اتنا کہ وہ موبائل سے نکل کر آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو زیادہ اہمیت دے. اور یہ ہر ایک کے لیے گویا کہ چیلنج سا بنا ہوا ہے, والدین کے لیے بھی, اولاد کے لیے بھی, اور دیگر جو کپلس ہیں ان کے لیے بھی جو میاں بیوی ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے گویا ایک طرح کا چیلنج بنا ہوا ہے. یہ پورا چیلنج ہے, یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے پورا ایک چیلنج ورلڈ ہے. اور سب اس وقت گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مور اور لیس کم و بیش پریشان ہے, اسٹوڈنٹ پریشان ہے, ٹیچر پریشان ہے, تعلیم کے نام پر, کاروبار کے نام پر. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس موبائل کے چکر میں جو گن مین, چوکی دار اور اس طرح کا ایک بالکل حساس پوائنٹ ہے
جی,
وہ پریشان ہے. یعنی کہیں آؤ جاؤ تو جو ایک میں نام نہیں لینا چاہتا, کئی ایسے سینسیٹیو جگہیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اچھا موبائل میں ایسا بندہ گم ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی جب گیم وغیرہ کا جو پتہ چلتا ہے تو ایسا لوگ نکل جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایسی عجیب و غریب حالت ہے, رات نکل جائے گی, دن نکل جائے گا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کتنے بج گئے اور کیا ہو گیا. تو ان حالات کو درست کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیے بہت پچھتاوا ہوگا, خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹے گا تو بہت پچھتاوا ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ یہ موبائل سے, موبائل آپ کا کیا, موبائل آپ کا بچہ بن سکتا ہے؟ موبائل آپ کا بیٹا بنے گا تو موبائل سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ نہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. موبائل تو کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. اس کی وجہ سے کیوں اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کے ماحول کو آپ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ تو جو بھی اس طرح کی عادتیں لے کر بیٹھے ہیں, میں ان کو یہی درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں اپنے آفس میں, اپنے روزگار پر, اپنے کاروبار پر, اپنے گھر بار پر, ہر جگہ لے آ جائے گا. تو لوگ مسجد تک میں ویڈیوز گیم کھیلتے ہیں, مسجد میں عجیب و غریب ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرے کو کنفرم اطلاعات ہیں, کنفرم اطلاعات ہیں. مطلب بہت لت پڑ گئی, اب جہاں بھی بیٹھے گا وہ کریں گا. بسوں میں چل رہے ہیں تو اسی میں لگے, بھائی اسی موبائل میں قرآن بھی ہے, اسی موبائل میں حدیث بھی ہے, اسی موبائل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی ہیں, اسی موبائل میں دین اور اسلام کی بیسک تعلیمات بھی آپ محفوظ کر کے آپ اس کے ذریعے بھی تو اپنے اس کو نکال سکتے ہیں. اب یہ کر کے دیکھیں, آپ کے گھر کا ماحول بگڑنے کا وجہ نہ سدھرے تو مجھے کہیے گا. جب آپ کو کوئی دیکھے گا کہ یہ موبائل کے ذریعے قرآن پڑھ رہے ہیں, موبائل کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں, موبائل کے ذریعے, وہ بھی ایک ٹائم, سرٹن ٹائم کے لیے ہوگا نا, ہر وقت تو بندہ نہیں اس کے اندر مصروف رہتا. تو آپ کو مطلب یہ کہنے کا وجہ موبائل چھوڑو, وہ آ کر چائے رکھے گی, وہ جا کے پانی رکھے گی, جب پانی بھی پیے چائے بھی پیے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. آپ کی گھر میں عزت بنے گی. یہ موبائل کا پازیٹیو, یعنی آپ کی پازیٹیو ہیبٹ جو ہے نا, آپ کے کردار کی پازیٹیوٹی کو شو کر رہی ہوتی ہے, اور گھر میں بھی سارا پازیٹیو ماحول بن رہا ہوتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. اب کھانے پہ بیٹھے ہوئے, موبائل لے کر بیٹھے ہوئے, وہ بیچاری پکا کر بیٹھی ہے, کامنٹ کا آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ دیکھو یہ کھائے گا تو کچھ تو کچھ تو بولے گا.
اللہ,
اور وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلا. तो ये इतनी जरूरी को नेसेसरी चीज है तो वो रोज नहीं होती, वो फिर आपस की एक अंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है, या फिर बाद में बैठ कर बाजे स्पेस दें घर के अंदर। अगर ये फैमिली की इस वक्त चूंकि रिपोर्ट फैमिली पर थी
जी,
तो स्पेस दें, स्पेशली जब आप काम काज से घर पर वापस आए स्पेस दें कि अब बैठे हैं पूरा दिन, आप भी बाहर थे, औरत अपने घर में मसरूफ थी, माँ बाप से आप दूर थे, माँ बाप औलाद से दूर थी, रात को एक डेढ़ घंटा आपस में बैठ कर अगर कोई गुफ्तगू कर सकते हैं तो मेहरबानी करके मोबाइल साइड में रखें और आपस में बातचीत करके, कोई को गुनाह भरी बातचीत थोड़ी करनी है, अच्छी और नेक और सुथरी गुफ्तगू भी तो घर में हो सकती है, तरबियत की बातें हो सकती हैं, दो बच्चे तीन बच्चे आपके करीब आकर बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाए, बीवी आपसे दो बातें करना चाहती है, आपके बच्चों की अम्मी, आपके बच्चों के अब्बू आपसे दो बातें करना चाहते हैं, वो मोबाइल पर लगी हुई है, फोन पर लगी हुई है, पड़ोसन से लगी हुई है, अपनी अम्मी से लगी बातें कर रही है, अपनी बहनों से बातें कर रही है, अपनी सहेलियों से बातें कर रही है, और सुनाओ कल की दावत में क्या हुआ था, अच्छा कौन से कपड़े पहन के गए थी, अच्छा वो तो उससे कौन से कपड़े पहने थे, अच्छा वही लास्ट वाले कपड़े पहने थे, लगते बेचारी के पास दूसरे कपड़े नहीं है, तुमने कुछ को कपड़े नहीं दे दिए, इसको समझाया नहीं था, अब इतने सारे दूसरे, वो बेचारा बैठा पानी का इंतजार कर रहा है, अल्लाह की बंदी पानी तो पिला दे, सब्र तो करो, उससे कपड़े सही नहीं पहने थे, क्या हो गया आप, ये फैमिली है आपकी, वो कह रहे हैं हालात बहुत अच्छे होने चाहिए थे, हालात हमने अपने हाथों खराब किए हुए, अल्लाह पाक हमें समझने की और अकल सलीम अता फरमाए और अपनी चीजों को बर्बाद जाया होने से बचाएं। इजाजत दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।